तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने के बारे में सोचने की? ये सोचने की भी? आस्तिक ने कहा अरुणिमा के करीब आते हुए। अरुणिमा ने उसे देखा तो उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी जगह पर जम गई थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अरुणिमा उसे अपने करीब आता हुआ देख रही थी। उसके एक हाथ में बंदूक थी और आंखों में दहशत भरे अंगारे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अरुणिमा को जान से मार डालेगा। अरुणिमा इतनी डर गई थी कि सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। आस्तिक उसके पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक गया। उसके सारे आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर रास्ते के पास खड़े हो गए। आस्तिक ने अरुणिमा को देखा। उसका डर से भरा चेहरा देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक सुकून भरी शैतानी मुस्कान आ गई। आखिर वो तो एक माफिया ही था। लोगों के चेहरों पर डर देखना उसे अच्छा लगता था, और जब वो डर आस्तिक रायचांद के नाम का हो तब वो इस चीज़ से और ज्यादा घमंड महसूस करता था। आस्तिक अरुणिमा को ऐसा देखकर और ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। हालांकि उसके मन में तो यही था कि अरुणिमा को मारकर वो माफिया की कुर्सी हासिल कर ले। एक तरह से देखा जाए तो अरुणिमा उसके लिए एक बेवकूफ़ औरत से ज्यादा कुछ नहीं थी, खासकर तब जब उसने देखा कि अरुणिमा उसके कैद से निकलने के लिए भाग गई थी, वो भी उसकी सुरक्षा को चकमा देकर। एक पल के लिए आस्तिक ने अरुणिमा की होशियारी की तारीफ भी की, क्योंकि उसने उसकी ट्रेंड सुरक्षा को चकमा दे दिया था। लेकिन अरुणिमा एक जगह पर गलती कर गई। वो भूल गई कि ये इलाका, ये शहर सब कुछ आस्तिक रायचांद का था। उसकी मर्जी के बिना ना तो इस शहर में कोई आ सकता था और ना ही यहाँ से जा सकता था, खासकर उसकी बीवी तो कभी भी नहीं। जान, आस्तिक की जान कहने पर अरुणिमा की जान जैसे निकल गई। वो डरती हुई नज़रों से आस्तिक को देख रही थी। उसका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसकी उंगलियां इतनी बुरी तरह से कांप रही थीं कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अरुणिमा अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन पर गड्ढा करने की कोशिश कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी यहाँ एक बड़ा गड्ढा हो जाए और वो उसमें दफन हो जाए। उसे ऐसा देखकर आस्तिक के इरादे और ख़तरनाक हो गए। वो शैतानों की तरह अरुणिमा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, पर तभी अरुणिमा ने कांपती हुई जबान से कहा, नहीं प्लीज़ मेरे करीब मत आना, मुझे कुछ मत करना। आस्तिक के कदम नहीं रुके। वो बस अरुणिमा के डर से भरे हुए चेहरे को देखकर उसकी तरफ बढ़ता रहा। अरुणिमा लगातार अपना सिर हिलाते हुए उसे अपने करीब आने से मना कर रही थी। उसके बालों की लटें उसके गालों पर पसीने से चिपक गई थीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा बुरी तरह से डर से सुर्ख हो गया था और उसकी नाक और मुंह से पसीना बह रहा था। अरुणिमा पीछे हटते हटते एक पेड़ से टकरा गई। अब उसके पास पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची थी। चारों तरफ आस्तिक के आदमी खड़े थे और सामने खुद शैतान खड़ा था। आस्तिक अरुणिमा के पास आया। उसने उसकी गर्दन के पास अपनी उंगलियां फंसा दी और उसके बालों को पकड़कर छटका दिया। उसके स्पर्श से अरुणिमा इतनी सहम गई जैसे उसकी धड़कनें बंद हो गई हों। लेकिन आस्तिक की नज़रें अरुणिमा के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। उसका डर से भरा लाल चेहरा आस्तिक को न जाने क्यों बार बार देखने पर मजबूर कर रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरुणिमा ने कांपते हुए अपने हाथ जोड़कर आस्तिक से विनती करना शुरू की। आस्तिक ने उसकी ये हालत देखी तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा साइड में करते हुए कहा, बंद करो ये कहना। लेकिन अरुणिमा नहीं रुकी। वो अभी भी कह रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, बस मुझे जाने दो। आस्तिक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरुणिमा को घूरता है। अरुणिमा डर से सहम जाती है और चुपचाप रास्ता देखने लगती है। तभी आस्तिक खतरनाक अंदाज में बोलता है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ जान, मुझे अपने आगे के प्लान के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे पता है कि तुम मेरा डार्क साइड नहीं देखना चाहती, इसीलिए मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरे बहुत करीब है, और तुम्हारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मैं अभी पूरी नहीं कर सकता। अरुणिमा डरते हुए कांपती आवाज़ में कहती है, मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये सरासर गलत होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आस्तिक उसके शब्द सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। अरुणिमा का ये कहना कि वो उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती उसे अंदर तक छकझोड़ देता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसका मन करता है कि अरुणिमा की जान ले ले, लेकिन वो जानता है कि ना वो इसे छोड़ सकता है और ना ही इसे मार सकता है। आस्तिक अरुणिमा से कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूरता रहता है। वहीं अरुणिमा डर से कांपते हुए उसे देखती है। फिर आस्तिक हल्की मुस्कान के साथ अपनी बंदूक की नोक से माथा खुजलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुमने कभी मुझे ये बताया ही नहीं। खैर, हमारे बीच ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि हम एक दूसरे से कुछ बात कर सके, इसीलिए शायद मुझे तुम्हारे मन की बात पता नहीं चली। लेकिन अब ये समझ आ गया कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, सिर्फ मुंबई ही नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंडिया से बाहर भी भेज दूंगा, तुम्हारी फ्लाइट और बाकी खर्च मैं खुद उठाऊंगा, जहाँ जाना चाहती हो वहाँ सेटल हो जाना। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आस्तिक इतनी आसानी से उसे जाने दे रहा है। उसने असहजता से पूछा, तुम सच कह रहे हो, मैं जा सकती हूँ? आस्तिक की शैतानी मुस्कान लौट आती है। वो सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन एक बात जान लो, इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अब तुम देख लो, तुम्हारे पापा की कंपनी को बचाने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया था, उसके बदले मुझे तुम्हें कैद करने का हक मिला, लेकिन अगर तुम अब आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी।
तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं, अरुणिमा डरते हुए पूछती है। आस्ते खतरनाक आवाज में कहता है, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने अभी तो पूरी बात भी नहीं कही। तुम्हें आजादी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास ना पैसे हैं और ना ही और कुछ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ, एक छोटा सा गेम। अगर तुम जीत गई तो तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। कैसा गेम? अरुणिमा हैरानी और डर से पूछती है। आस्तिक मुस्कुराते हुए धीमे लेकिन डरावने अंदाज में कहता है, डेथ गेम। अरुणिमा का शरीर डर से कांपने लगता है। वो कांपती जबान में कहती है, नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। लेकिन आस्तिक सनकी की तरह हंसता है। उसकी हंसी किसी डरावने शैतान जैसी थी। वो अपनी बंदूक को उंगलियों पर घुमाते हुए कहता है, तुम्हारे गेम खेलने का कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन मेरा मूड बन चुका है और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आस्तिक जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम जंगल में भागो, मेरे आदमी तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम पर फायरिंग करेंगे। एक घंटा ये गेम चलेगा। अगर तुम बच गई तो तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी, और अगर मर गई तो श्रद्धांजलि। आस्तिक इतने सामान्य तरीके से बात कर रहा था जैसे बच्चों के साथ कोई खेल की बात हो। अरुणिमा डर से कांपती है, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। आस्तिक की मुस्कान गायब हो गई। उसने हैरानी से अरुणिमा को देखा। अरुणिमा उसे दृढ़ता से देखते हुए कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ ये गेम खेलने के लिए, और इसका परिणाम चाहे जो भी हो, जीत मेरी ही होगी। अगर मैं बच गई तो तुम मुझे आजाद करोगी, और अगर मर गई तो तुम्हारी कैद से मुक्त हो जाऊंगी। मौत तुम्हारे साथ रहने से बेहतर विकल्प है।
आस्तिक जो अपनी उंगलियों में बंदूक घुमा रहा था अचानक रुक गया और हैरानी से अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा इस हद तक हताश हो चुकी थी कि वो मौत को अपनाना सही समझ रही थी, लेकिन आस्तिक को ये मंजूर नहीं था। आस्तिक ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, चलो फिर ठीक है, खेलते हैं डेथ गेम। आस्तिक सीधा अपनी स्कॉर्पियो में जाकर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उसके सारे आदमी भी गाड़ी में बैठ गए। खिड़की का शीशा खोलकर उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें बाहर निकाली और निशाने की तैयारी करने लगे। भागो! जैसे ही आस्तिक ने ये कहा, अरुणिमा जंगल की तरफ भागने लगी। आस्तिक भी अपनी गाड़ी लेकर अरुणिमा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चला गया। वो मजे से इस खेल का आनंद ले रहा था जबकि अरुणिमा अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रही थी। पीछे से लगातार फायरिंग हो रही थी। अरुणिमा पागलों की तरह हर पेड़ के पीछे छुपते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जहां भी वो छुपती उसके पास ही गोली निशाना बनाकर लगती। आस्तिक को ये खेल बहुत मजेदार लग रहा था, जैसे वो अरुणिमा का शिकार कर रहा हो। अरुणिमा एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भागते हुए खुद को छुपा रही थी। तभी एक गोली उसके बाजू से गुजर गई। जैसे ही आस्तिक ने ये देखा, उसने अपनी बंदूक पीछे कर ली। उसने देखा कि अरुणिमा तेज चीख के साथ पेड़ के पीछे खुद को संभाल रही थी। तभी उसने गुस्से में अपनी बंदूक एक आदमी की तरफ मोड़ी और कहा, तुझे फायरिंग करने को कहा था क्या मैंने? वो आदमी डरते हुए बोला, मुझे लगा आप उसे मारना चाहते हैं, इसलिए ये गेम खेल रहे हैं। उस आदमी की बात सुनते ही आस्तिक ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए कहा, अगर उसे मारना ही होता तो मैं उसे ढूंढता क्यों? उसके मरने का समय अभी नहीं आया, पर तेरा समय आ गया है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने उस पर गोली चलाकर। और इसी के साथ आस्तिक ने उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली मार दी। वो वहीं मर गया। दूसरे आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी लाश को बाहर धक्का दे दिया। इसके बाद आस्तिक ने देखा कि अरुणिमा अपनी जगह पर नहीं थी जहां वो घायल होकर छुपी हुई थी। ये देखकर आस्तिक के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आ गई। वो जानता था कि अरुणिमा कहीं आसपास ही छुपी होगी क्योंकि उसके बाजू में गोली लगी थी। अब खेल और भी दिलचस्प हो गया था। आस्तिक अपनी गाड़ी से बंदूक लेकर बाहर निकल गया। उसके आदमी भी बंदूकें लेकर बाहर आ गए। आस्तिक हंसते हुए उन पेड़ों की तरफ देखने लगा और बोला, जान कहाँ छुपी हो? मुझे तुम नजर नहीं आ रही हो। अगर तुम दिखाई नहीं दोगी तो मैं फायर कैसे करूंगा? अरे डरो मत, वो गोली गलती से चल गई थी। वो भी उस बेवकूफ आदमी ने चलाई थी। अगर मैंने चलाई होती तो तुम्हारे बाजू पर नहीं, सिर पर लगती। अच्छा चलो बाहर आओ, मैं अपने आदमियों को मना कर दूंगा। कोई तुम पर गोली नहीं चलाएगा, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। लेकिन उसे कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अरुणिमा घायल थी पर उसे कहीं भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। आस्तिक थोड़ा रुककर अपनी नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ शक हुआ और उसने अपने आदमियों को जंगल घेरने का हुक्म दिया। आस्तिक के आदमियों ने तुरंत जंगल घेर लिया। अरुणिमा ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी क्योंकि वो घायल थी। वो एक शिकारी के बनाए गड्ढे में गिर गई थी और वहीं अचेत पड़ी थी। आस्तिक के आदमियों ने उसकी धीमी सांसों की आवाज सुनी और उसे ढूंढ लिया। आस्तिक गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठकर अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा डरते हुए कांपती आवाज में बोली, प्लीज मुझे मार दो। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ गेम खेलकर मजा आया जान। आस्तिक जल्दी से गड्ढे में उतर गया और अरुणिमा को अपनी गोद में उठा लिया। गोली लगने की वजह से अरुणिमा की हालत नाजुक हो गई थी। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया। अरुणिमा ने आस्तिक के सीने पर सिर रखा और कांपते हुए बोली, मौत तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही इरादे थे।